أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، جنہوں نے بلایا ان کا بلانا قبول کرے، اور اس وقت ہم ہر جذبے کو پیچھے ڈال دیں اور صرف سیکھنا اور سکھانا. اندر کی ایکسائٹمنٹ، باہر کی باتیں، ہر وہ چیز جو ہمارے پڑھنے کے، سیکھنے کے اور ہمارے مقصد کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دیجئے. ہم ایک دوسرے کو مل لیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے. تو آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی کبھی کوئی باہر سے آتے ہیں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، مجھے اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ بالکل مجھے نارملی دیکھیں، بالکل ایسے سمجھیں کہ میں دنیا کی سب سے عاجز، کمزور اور گناہ گار ہستی ہوں، ورنہ میں بات نہیں کر سکوں گی. ہم سب اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، لیکن کسی کے بارے میں کچھ یہ سوچ لینا کہ شاید اس کو دیکھ کر ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب کہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. تو آپ بالکل نارمل ہوں، ریلیکسڈ، اور جو بات میں بھی کہوں گی وہ بھی پورے فوکس سے کرتی ہوں. میری عادت ہے کہ میں کام تھوڑا ہی کرتی ہوں، لیکن جو کرتی ہوں اس کو فوکس سے کرتی ہوں. تو آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھی صحبت انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے. تیار ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان بنایا، پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قرآن کا شوق دیا، باشعور انسان بنایا. آج ہمارا یہ لیکچر جو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیلیور ہو رہا ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ صالحین کی صحبت. اور نئے ساتھیوں کے لیے، آپ میں سے کتنے لوگ جو نئے ہیں جو صرف آج اس گھر والوں کے کہنے پہ اس میں آئے، وہ ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ کافی نئے لوگ ہیں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا. تو آپ کے لیے یہ بات فائدہ مند ہوگی کہ ہمارا یہ لیکچر پی کے ٹرپ 2022 کا لیکچر نمبر 19 ہے. یہ اس سے پہلے 18 لیکچر ہو چکے، لیکن آپ کا کچھ بھی نہیں گیا، کیونکہ ہر لیکچر مختلف ہوتا ہے. کوئی لیکچر پوری سیریز میں ریپیٹ نہیں ہوتا، چاہے 100 لیکچرز کی سیریز ہو. اور اس سے فائدہ کہ آپ وہ 18 لیکچر کہاں سے سن سکتے ہیں؟ اسی نور القرآن ٹی وی کو جا کے سبسکرائب کریے. فورتھ ٹیب اوپر جو پلے لسٹ کی ہوتی ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس نام سے ایک لسٹ ملے گی، پی کے ٹرپ 2021-22. کلک کریں، نمبر 1 سے ترتیب سے آپ کے سامنے کھلیں گے، چاہے ایک مہینہ لگا کے سن لیں. کپڑے تو آپ استری کرتے کوئی نہیں، کھانا آپ پکاتے کوئی نہیں، معذرت کے ساتھ گاڑیاں آپ چلاتے کوئی نہیں ہے. باہر والوں کو تو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا بھائی کپڑے استری کرتے ہوئے ایک لیکچر سن لینا، کسی کو ہم کہتے ہیں اچھا وہ گاڑی چلاتے ہوئے سننا. تو یہاں تو ماشاءاللہ خدمت گاروں کی لسٹ، فوجوں کی فوجیں ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا بلیس کیا اور اللہ آپ کو اس میں اور بھی برکت دے، اور ان سارے غریب غربا کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. یہ ماسیاں، یہ بابے، یہ غریب آپ لوگوں سے زیادہ محبت سے سنیں گے جب آپ انہیں کہہ دیں اس ایک گھنٹے پہ کچھ نہیں اور تم نے کرنا، بیٹھ کے سننا، پیسے بھی دیں ان کو کام کرنے کے بغیر اور سنائیں بھی. ہمارے ایسے باہر ساتھی وہاں تو پر آور پے کرتے ہیں، تو اگر 5 گھنٹے کے لیے کسی میٹ کو بلاتی ہیں نا تو 1 گھنٹہ ایکسٹرا پے کرتی ہیں. میرے خیال 100-125 کرون تو ہوتا ہی ہوگا ابھی بھی، اور پھر اس گھنٹے میں اس کو بیٹھ کے مزے سے بٹھا کے چائے پانی دے کے کہتی لیکچر سنو. تو ہرس تو ہو نا ہمیں، یہ بےچارے ہماری خدمتیں کر کے تلے نہ جائیں اور پتہ چلے کہ ان کے اندر بھی گندگیاں ویسی رہ گئیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ لیکچرز آپ سن سکتے ہیں جہاں بھی آپ کی سہولت ہو. اور اس طرح اگر آپ فیس بک کے عادی ہیں تو مائی نور القرآن، فیس بک میں لفظ مائی پہلے لگتا ہے نور القرآن سے، اور یوٹیوب میں نور القرآن کے بعد 2 لفظ ٹی وی جو ہم سب جانتے ہیں، یہ اس کو کبھی ہم ٹی وی کہتے تھے، آج اسکرینز ہیں. تو بہرحال اس میں یہ لیکچرز موجود ہیں. ایک تھیم رکھتے ہیں ہر سیریز کا، اس کا بھی ہے. ابھی اس سے پہلے جو یو ایس اے کی ٹرپ تھا جس میں کچھ یو کے بھی تھے، اس کا ٹاپک تھا زندگی کرونا سے پہلے، کرونا کے دوران اور کرونا کے بعد، لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا. اس میں میرا خیال ہے کہ 54 لیکچرز گئے ہیں ہمارے، الحمدللہ 3 ماہ کی سیریز تھی پوری. اس سیریز جس میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ ہے زہر الفساد فی البر والبحر. جو آپ میں سے علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں سورۃ نحل کی یہ آیت کیا خبر دیتی ہے، اور یقین کریں کہ رونا ہی آتا ہے باہر کی دنیا کو دیکھ کر کہ اللہ کی یہ بات کتنی سچی ہوئی کہ خشکی اور تری پہ فساد پھیل گیا. ہمارے ذہنوں میں لفظ فساد کے ساتھ گولیاں چلنا، فسادات، کراچی کے وہ ہنگامے، ہڑتالیں آتی ہیں، وہ بھی فساد ہے، لیکن وہ ایک فساد کا بڑا ہی ایک مانوی سا ٹاپک ہے. فساد کا اصل معنی ہوتا ہے بگاڑ، डीकम्पोज होना। अभी खाना पकता है, कितनी अच्छी खुशबू होती है। एक दिन बाहर पड़ा रहे, गर्मी भी हो तो खोलेंगे तो उसमें स्मेल आएगी। खाने की डीकम्पोजिशन शुरू हो गई, उसमें जर्म्स आ गए, वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए। इसको फसाद कहते हैं। इस्लाम फसाद किसको कहता है? फसाद है अल्लाह के साथ बंदों का ताल्लुक बिगड़ जाए और बंदों का बंदों से ताल्लुक बिगड़ जाए। फासिकीन की सिफात में जो चौथे रकूब में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लज़ीन यनकुदून अहदल्लाही मिन बादी मीसाकिही, वो अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ देते हैं। पिछला लेक्चर 18 जो था वो निफाक का इलाज इनफाक, तो उसमें ये बात की थी कि अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक टूटता है तो निफाक पैदा होता है। आज हमारे इस टॉपिक सालेहीन की सोहबत का क्या ताल्लुक है जाहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, तो बड़े ही दुख के साथ बताऊंगी कि आज के दौर का फसाद ये है कि हमें नेक लोगों की सोहबत की ख्वाहिश नहीं रही। हमारी नस्लें नेक लोगों, अच्छे लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले या अल्लाह से जोड़ने वालों से ज्यादा तोड़ने वालों के फैन हो गए, उनके शेदाई हो गए। और मैंने अपने इस ट्रिप में जो बातें मजीद सुनी, जो कि पिछले ट्रिप्स में भी सुनती थी, कॉन्सर्ट्स, कॉलेजेस में कॉन्सर्ट्स, नाम लिए बगैर, परसों मैंने सुना जिस जगह जिस शहर में मैं थी कि एक कॉन्सर्ट आज से शुरू हो रहा है, 6-7 दिन जारी रहेगा। और आपके स्कूलों और कॉलेजों में, वो जगह जहां से कौमें बनती हैं, आज उम्मत मुस्लिमा वहां से बिगड़ रही है। ये है फसाद। आज हमारे पास बुरे लोग, बुराई की तरफ बुलाने वाले, तो बहरहाल सालेहीन की सोहबत। हमारे असलाफ इस पे कितने हरीज थे, उनको कितना शौक था, हम सब इसको तारीख के आईने में देखे। माएं पैदा होते बच्चों को ये सबक पढ़ाने लग जाती थी कि जब तुम जरा से बड़े हो जाओगे तो तुम्हें फलां इमाम के पास छोड़कर आऊंगी, फलां मुहद्दिस तुम्हारे साथ, यानी तुम उसके साथ वक्त गुजारोगे। आपने इमाम रबी का किस्सा सुना होगा, बचपन में माँ ने कैसे उसको पाला। बाप चले गए थे छोड़कर और बाद में जब आए तो वो बच्चा इमामत के मनसब पे फाइज था। और आपने देखा होगा कि इमाम बुखारी ने 18 साल की उम्र में अपने शहर के उस्तादों की सोहबत का फैज पा लिया था। लोग सालेहीन के साथ रहना चाहते थे। और याद रखिए कि जब हम हर रोज एक दुआ करते हैं ना, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन मांगते हैं ना, तो वो असल में सालेहीन की दुआ करते हैं। क्योंकि सूरत निसा की आयत में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कौन है अनमत अलैहिम व मै युति अल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीन अनम अल्लाह अलैहिम मिनन नबीजीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालेहीन। इस पे हमने 2-3 माह पहले पेरिस में 4 दिन का एक कोर्स किया है, मदारज ईमान। ईमान के ये 4 दर्जे हैं। आप और मैं कम से कम सालेह तो बने, सालेहात तो बने, उससे ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम शुहदा भी बनेंगे। अल्लाह उससे ऊपर ले जाए तो हमें सिद्दीकियत पे भी ले जाए। तो बात यह है कि इंसान पत्थरों के साथ भी कोई रहता है ना, तो उसके मिजाज में सख्ती आने लगती है। सूरह तौबा में 11वें पारे का बिल्कुल शुरू है, या तज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम, उसके आगे ही फौरन बदुओं का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बद्दू, कुछ उसमें ईमान वाले थे लेकिन देहातों में रहने वालों के दिल सख्त हो जाते हैं। रिवायत मिलती है जानवरों में रहने वाला कठोर हो जाता है, गाय भैंसों के साथ भां भां करता देखकर डेलिकेसी खत्म हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं अक्सर ऐसे लोग ऊंचा बोलते हैं, चीख के बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं। तो पत्थरों के साथ रहते हुए मिजाज में सख्ती आने लगती है और नरम इलाकों में रहने वालों के अंदर नरमी आने लगती है। बकरियों को चराने वाले के मिजाज में सॉफ्टनेस आने लगती है। इसीलिए हर नबी को नबूवत का ताज पहनाने से पहले बकरियां चरवाई गईं ताकि उसमें नरमी आए। तो क्या पता चला कि इंसान बेजान चीजों में से भी जिसके पास रहता है उसका भी असर आता है, तो कहां फिर इंसान का इंसान पे असर ना आए। तो सोहबत इंसान के ऊपर बहुत असर अंदाज करती है। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात सुनी हुई है, आप सबको इसका खुलासा भी करवा दूंगी बाद में, लेकिन आपने फरमाया कि अच्छी सोहबत की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है, क्योंकि वो उसको खुशबू देगा लेकिन अगर नहीं भी देगा तो बार बार जब शीशी खोलेगा किसी को देने दिखाने बेचने के लिए तो उसकी खुशबू सूंघने में तो आ ही जाएगी ना। और बुरी सोहबत की मिसाल भट्टी फूकने वाले यानी लोहार, ब्लैक स्मिथ की तरह, कि अगर वो कुछ भी ना उसको दे तो उसकी जो राख उड़ेगी या जो कालस होगी वो दूसरे के कपड़े तो काले कर देगी ना। तो सोहबत बड़ी चीज़ है। हम सबको अपने बच्चों की सोहबत की फिक्र भी करनी है और अपनी सोहबत की भी। कभी कभी हम अपने बच्चों के बारे में वो चाह रहे होते हैं जो हम अपने बारे में नहीं रख पाते। कभी कभी ऐसा होता है। एक बहुत अच्छे आलिम थे तो वो कहा करते थे सालेहीन की सोहबत के बारे में कि तुम सालेहीन की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत में रहा करो। एक मर्तबा किसी ने कहा कि आप हमें सालेहीन की सोहबत के इतने फजाइल बयान करते हैं, हमें तो लगता है कि इस बात में बड़ा मुबालगा है, बड़ा मुबालगा है, यानी इतनी भी नहीं बात। तो उनका जवाब सुनिए, इससे आपको इसकी अहमियत समझ आएगी। कहने लगे कि हाँ भाई, आप ऐसा करें कि ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा इल्म हासिल करें ताकि आप सहाबी बन जाएं। वो कहने लगा, हजरत कोई बंदा इबादत की बदौलत सहाबी नहीं बन सकता, इल्म की बदौलत सहाबी नहीं बन सकता। अब अगला जुमला सुनिए, सहाबी तो वो होता है जिसने नबी सल्लम की सोहबत पाई हो। आपने फरमाया, अच्छा फिर आप ज़्यादा इबादत करें ताकि ताबई बन जाएं। उन्होंने अर्ज किया कि ए हजरत, कोई बंदा इबादत की बुनियाद पे ताबई नहीं बन सकता, ताबई तो वो होता है जिसने सहाबा की सोहबत पाई हो। आगे आप समझ चुके होंगे। फरमाया, अच्छा ऐसा करो, कम अज कम इतनी इबादत तो करो कि तबे ताबई बन जाओ। तो फिर वही बात उसने कही कि तबे ताबई वो होता है जिसने किसी ताबई की सोहबत पाई हो। तो फिर हजरत ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अभी तक आपको सोहबत की अहमियत का फिर इदराक नहीं हुआ कि सहाबी ना इल्म की बुनियाद पर सहाबी है, ना इबादत की बुनियाद पर सहाबी है, वो सोहबत की बुनियाद पर सहाबी है। और यही असूल ताबई और ताबईन की भी है। तो सोहबत सालेहीन, अरब लोग शायरी को बहुत पसंद करते थे। और एक बड़ा मारूफ शेर है अरबी का, जिसका तर्जमा क्या है कि शायर कहता है कि मैं सालेह तो नहीं हूँ लेकिन सालेहीन से मोहब्बत बड़ी करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मोहब्बत मुझे उनके साथ जन्नत में मिला देगी। और आपने वो हदीस भी सुनी होगी, अलमर उमा मन अहब, आदमी क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। एक सहाबी अल्लाह के नबी के साथ बहुत मोहब्बत फरमाने वाले बड़े मखमूम से बैठे हैं, उदास से शक्ल है। आपने पूछा, साथी क्या हुआ? कहने लगे कि आज एक ख्याल ने मुझे उदास कर दिया कि आज मैं मदीना में रहता हूँ, आप भी रहते हैं, मैं अपने घर में होता हूँ, बीवी बच्चों में मसरूफ होता हूँ, मुझे एकदम आपकी याद आती है तो मैं उठ के आता हूँ और आपको देख लेता हूँ, मस्जिद में आता हूँ, देख लेता हूँ, मुझे आपको देखकर सुकून मिल जाता है, चैन आ जाता है। और कभी मैं अपने दुकान पे होता हूँ, बाजार में काम धंधे में हूँ, मुझे एकदम आपका ख्याल आता है तो मैं आके आपको देख लेता हूँ। जिस ख्याल ने मुझे आज उदास कर दिया वो ये था कि अगर मैं जन्नत में चला भी गया, देखिए आजिज़ी, हम तो अपने लफ्ज़ के साथ लिखते हैं ना, मरहूम और मग़फ़ूर और फुला और फुला और हज़रत और काबा और किबला। दुआ करें ऐसा हो, दुआ तो कर सकते हैं लेकिन यकीन नहीं कर सकते। कहने लगे, अगर मैं चला भी गया ना तो आप तो आला जन्नतों में होंगे, जैसे VIPs में अगर लोग साथ सफ़र भी कर ले सदर वजीर या किसी बड़े के साथ तो उनका रैंक और होता है, कहीं ना कहीं जाकर तो ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क बन ही जाता है ना उनका उनका। तो कहने लगे कि अगर मैं जन्नत में चला भी गया तो मैं तो उस मुकाम से बहुत नीचे होऊंगा जहां आप हैं, वहां जब मुझे आपकी याद सताएगी तो मैं क्या करूंगा? ज़रा से इस पर गौर कीजिए, जब मुझे वहां आपकी याद सताएगी तो क्या होगा? उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरे साथी गम न कर, अल मर उमा मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। साहबा कहते हैं कि हमें जितना इस बात से खुशी हुई इतनी किसी और आज से ना हुई। तो बात यह है, बंदा दुनिया में जिनके साथ होता है आखरत में उन्हीं के साथ होगा। मौलाना रूमी एक बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे, फारसी शायरी के नाते से मारूफ भी हैं, उनकी रुबाइयाँ भी हैं और हकायात रूमी भी जानते हैं आप। तो उनका फारसी का एक शेर है जिसका खुलासा क्या है कि अल्लाह वालों के साथ एक लम्हे के लिए बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अब जिनका शेर है, हदीस नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, लेकिन आप इसे ये समझ लीजिए कि जब बंदा इबादत करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है उसको पता भी नहीं होता ठीक भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, इबादत का तरीका भी ठीक है कि नहीं। बाज़ दफ़ा लोग 100-100 नफिल पढ़ते हैं रात को, कभी कभी लोग अपने हिसाब से बहुत इधर उधर किताबों से पढ़कर कई किस्म की नमाजें भी याद कर लेते हैं, कई किस्म के दुरूद ही याद करते हैं, 400 बार पढ़ना, 500 बार पढ़ना, 125,000 तो बहुत आयत करीमा नहीं पढ़ते। अब आप मुझे बताइए कि जो इबादत कर रहा है और उसको पता ही नहीं है कि अल्लाह के नबी ने ये की कि ना की, इसके बरक्स अगर वो किसी ऐसे बंदे से जो अल्लाह वाला, और याद रखिए अल्लाह वाला इल्म के बगैर नहीं बन सकता बंदा, ये अल्लाह के मुराकबे, ये जिक्र के हलके और ये यहाँ बैठे बैठे हवाओं में मदीना पहुंच जाना, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह वाला वो होता है जिसको देकर अल्लाह याद आए, जो अल्लाह से जोड़े, और वो खुद जुड़ा होगा तो जोड़ेगा ना। आप एक रस्सी आज ऊपर छत से गिराएं तो वो छत से जब खुद जुड़ी रहेगी तभी तो आपको ऊपर खींचेगी। जिस इल्म वाले का या जिस अल्लाह वाले का अपना ताल्लुक ही अल्लाह से टूट गया, वो खुद भी धड़म से गिरेगा, आपको भी गिराएगा। तो जरूरत है इस बात की कि अपनी इन चीजों को देखें। अब ये शेर इन्होंने पढ़ दिया। आज के दौर के एक बहुत बड़े मारूफ आलिम हैं मोहम्मद शफी साहब, तफसीर भी उनकी, कहते हैं कि जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मैंने कहा कि मौलाना रूमी ने तो ख्वाम खा मुबालगा रही कर दी। जैसे मैंने आपसे बात की, उन्होंने भी यही सोचा होगा। खैर, वो वहां से उठे तो उनके अपने एक उस्ताद थे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, बड़ी दौरे हाजिर की मारूफ शख्सियत है। कहने लगे, मैंने जाके कहा कि देखो ना, ये शायर लोग कभी कभार अपनी बात बयान करने के लिए मुबालगा कर देते हैं। तो मुफ्ती साहब ने पूछा, वो कैसे? कहने का, देखो जी, ये कुछ शेर है कि यक जमाना सोहबते बिलौलिया और बेहतर असद साला इबादते बेरिया। कि ये देखो ना, मौलाना का ये शेर ऐसे वो है, तो उन्होंने ये कुछ बात बढ़ा दी है, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने इस बात पे फिर क्या कहा वो मैं आपको सुना देती हूँ। तो थानवी साहब ने कहा कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये शेर यूं होना चाहिए था। अब उन्होंने शेर को कैसे बदला, यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर अज लख साला तौते बेरिया। क्या तर्जमा? अल्लाह वालों के साथ एक लम्हे के लिए बैठना 1 लाख साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। यानी दर्जा बढ़ा दिया कि उन्होंने तो 100 कहा, मैं तो लाख कह दूं, और इतात की बात कर दी। मैंने अर्ज किया कि हजरत, मुझे तो 100 साल की बात नहीं थी समझ आ रही, तो आपने ये 1 लाख सालों की बात क्यों कर दी? यानी अब वो कहने वाले और पूछने वाले का और भी क्वेश्चन बढ़ गया ना, कैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो जवाब सुन लीजिए मौलाना थानवी साहब का। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, कोई बंदा 1,000 साल इबादत करे या 1 लाख साल इबादत करे, साल हर साल की इबादत पर बंदे को वो मुकाम और मर्तबा नहीं मिलता जो एक लम्हे की सोहबत की बदौलत बंदे को नसीब हो जाता है। अल्लाह के नबी के साथ मैं आपको इसकी मिसाल दे देती हूँ कि आपको सिर्फ एक नजर देखा होता था किसी ने, सहाबा में से कुछ सहाबी ऐसे हैं, बुखारी की एक रिवायत सुना देती हूँ, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी मैदाने जंग में थे, एक बंदा भागता हुआ वहां आया, कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मुझे यकीन है कि आप सच्चे नबी हैं, मैं इस्लाम कबूल कर लूं या मैं जिहाद में हिस्सा लूं, यानी दोनों में से कौन सा काम पहले करूं? देखा जाए तो अर्जेंट काम क्या है, जिहाद, दुश्मन आया हुआ है, लेकिन अभी मैंने कलमा नहीं पढ़ा तो मैं पहले क्या काम करूं? जवाब क्या होगा आप भी जानते हैं। आपने कहा कि पहले इस्लाम कबूल करो, क्योंकि पहले अकाउंट खोलेंगे तो मनी भेजेंगे ना। हम नेकियों के अकाउंट में मनी कब भेजेंगे? जब पहले हमारा अकाउंट तो खुला होगा अल्लाह के साथ। आपने फरमाया कि आप पहले इस्लाम कबूल करें फिर जिहाद में हिस्सा लें। उस बंदे ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, और इतनी बात करके धुन तो सवार थी कि मैंने दुश्मन से मुकाबला करना है, दुश्मन के हजूम में घुस गए और किताल करते करते थोड़ी ही देर में शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लम तक खबर पहुंची कि वो देखिए अभी तो वो मुसलमान होके गया और शहीद भी हो गया। आपने फरमाया कि अमलुन कलीलन व अजरुन कसीरन। बुहारी की रिवायत है ये 2653 नंबर की, यानी इस बंदे ने अमल तो थोड़ा किया लेकिन अजर इसको बहुत ज़्यादा मिला। तो अमल थोड़ा, अजर ज़्यादा, क्यों? कि वो सहाबी बन गए थे। देखिए, एक नमाज नहीं पढ़ी, वक्त ही नहीं आया, एक रोज़ा नहीं रखा, ईमान की हालत में एक हज भी नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया के हुज्जाजे कराम मिल जाएं, सारे नमाजी और रोज़ा रखने वाले मिल जाएं, लेकिन एक आम दर्जे के सहाबी के मुकाम और मर्तबे को नहीं पा सकते। तो सोहबत की बदौलत बंदे को वो बुलंद मुकाम मिल जाता है जो साल हर साल की इबादत से नहीं मिलता। कुरान पाक में एक बड़ी मारूफ मिसाल है असहाबे कहफ की, और बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है इसमें कि कुत्ता तो पाल नहीं सकते तो असहाबे कहफ के साथ कुत्ता क्यों था? वाकई आप सब पढ़ते होंगे, चंद नौजवान थे, शहर में रहते थे, ईमान खतरे में पड़ गया तो अपने ईमान को बचाने के लिए दूर चले गए, और जब वो गए तो वो कितने थे? कुरान कहता है इन बहसों में मत पड़ो। तुम्हें इससे क्या लगे वो कितने थे, वो क्या थे? हाँ, लेकिन इतनी बात है कि उनके साथ उनका कुत्ता था, याद है ना? अब जरा सा गौर कीजिएगा तो फिर आपको ये बात समझे, क्योंकि ऐसी बातें करते हुए ना मैं बहुत डरती भी हूँ कि कोई पूरी बात समझे सुने बगैर आगे कर दे तो वो बात नहीं समझ आएगी। कुत्ता था, ईमान वालों के साथ था जिन्होंने अल्लाह को पहचाना, और वह साहबे कहफ के साथ जो अनयूजुअल से मामलात हुए वो भी आप जानते हैं। गार में ही अल्लाह ने उनके लिए एक छोटा सा इंक्यूबेटर बना दिया, साइडें भी पलट रहे हैं, सूरज भी कतरा के जा रहा है, आंखें भी खुली हुई हैं ताकि दुश्मन भी कोई आए तो उसको पता चल जाए कि ये जिंदा है। और अपना ईमान बचाने के लिए शहर को छोड़कर एक जंगल का रुख करते हैं और वहां चले गए। कुरान क्या कहता है? वकल्बुहुम बासितुन ज़िराईही बिलवसीद, सूरह कहफ की आयत 18 है, कि उनका कुत्ता दहलीज पर अपने हाथ बिछाए हुए था, बिल्कुल बाहर था। एक तवील अरसा ये गार में पड़े रहे, अल्लाह ने इन पे नींद तारी कर दी, और वो नींद एक दिन की नहीं, एक हफ्ते की नहीं, सैकड़ों साल पे मुहित थी। शमसी और कमरी के फर्क का देख के कुरान ने 9 साल का फर्क भी बता दिया। अब ऐसी कैफियत में अगर बंदा बगैर करवट लिए सोया रहे तो मट्टी खा जाती, बैड सोल जिसको आप कहते हैं। अल्लाह ने हिफाजत के लिए फरिश्तों को मामूर किया जो थोड़े थोड़े वक्फे से उनकी करवटें बदलवाया करते थे। अगर वो मुस्तकिल एक रुख पे रहते तो सूरज की गर्मी से जल जाते या सर्दी से ठंड जाते। अल्लाह ताला ने कैसे उनके लिए हिफाजत का इंतजाम किया कि सूरज एक खास डायरेक्शन से अंदर आता, जितनी गर्मी की जरूरत थी वो होती, जैसे आप कह के टेम्परेचर कंट्रोल था, थर्मोस्टेट अल्लाह ताला ने लगा दिया। और वो कुत्ता जो बाहर था उसने कोई तौहीद का सबक नहीं पढ़ा, कुछ कर नहीं सकता। वो कुत्ता जो किसी के बर्तन को मुंह लगा दे तो 7 बार धो लो और 8वीं बार फिर मट्टी या रेत से धो लो, नजस है, पाक जानवर नहीं है। लेकिन सोहबते सालेहीन ने उसका तذکرہ कुरान में कहां करवा दिया? असहाबे कहफ के साथ। एक कुत्ता ईमान वालों के साथ रहा, तौहीद वालों के साथ रहा, तो अल्लाह ने उसका तذکرہ कर दिया। अब वो कुत्ता है, हमें उसके बारे में क्या बोलने की जरूरत है, बात करने की, वो आग में जाए जन्नत में जाए। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है क्या, कि नेक लोगों के साथ रहने वाला अगर खुद ना भी नेक हो तो उसका जिक्र ना भी आए कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। मिसाल दे देती हूँ, क्रिकेट आप नहीं खेलते होंगे, आपके बच्चे तो खेलते होंगे, यदि आप ना भी देखते हो बच्चे बड़े शौक से खेलते हैं। 11 लोगों की टीम होती है शायद क्रिकेट में, इतनी होती है ना, थोड़ा सा मेरी भी याददाश्त ठीक है। एक शख्स छक्का मारता है पूरी टीम की फतह, 2006 में शायद जावेद मियादाद का छक्का मशहूर हुआ था ना शारजा में, एक छक्का जावेद से लगा या लल्ला ने लगवाया, जीत पूरी कौम की हुई। ये है सोहबत सालेहीन। कभी कभी हमारे घर में कोई एक बंदा ऐसा होता है, उसके ईमान, उसकी तवक्कुल, उसके तवक्कुल अल्लाह का समरा पूरा घर खाता है, कभी पूरा गांव खाता है, कभी पूरी बस्ती पे उसकी रहमत होती है। हदीस याद कीजिए कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लम के पास आए और कहा कि फलां बस्ती पे अल्लाह ने अजाब का हुक्म दिया है, तो कहा कि वहां एक नेक शख्स है, याद है ना हदीस? मैं बस वो इशारा तो इसलिए कर रही हूँ इधर कि कभी कभी कोई एक बंदा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, अच्छाई का भी और बुराई का भी। और ईमान की हिफाजत के लिए सोहबते सालेहीन क्यों जरूरी है, ये बहुत अहम बात जो नोट करिएगा भी। जब बंदा किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत रखता है तो ये मोहब्बत ईमान का कमाल जरिया बन जाती है। अल्लाह वाले से वही मोहब्बत करेगा जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी। अल्लाह की रजा के लिए किसी से मोहब्बत करना, इसको अल्लाह के नबी ने कैसे फरमाया? अबू दाऊद की ये रिवायत है, मन अहब्ब लिल्लाह, जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, हु लव्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वह अबगद लिल्लाह, और उसने बुगज रखा यानी मिट्टी, यानी अच्छा नहीं लगता कोई बंदा, क्यों? अल्लाह के लिए, यानी वो अच्छे काम नहीं करता तो आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे अपने पेट से निकला हुआ बच्चा हो, चाहे अपने साथ ही रहने वाला शोहर हो, अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये अच्छा काम नहीं करते। वह अता लिल्लाह, और जिसने अता किया, अतिया दिया अल्लाह के लिए, वह मना लिल्लाह, और जिसने मना की अल्लाह के लिए, फकद इस्तकमलल ईमान, बस बेशक उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। क्या पता चला? सोहबते सालेहीन आपके ईमान का तहफ्फुज़ है। बुरे लोगों में जाकर इंसान बुरा काम ना भी करे तो बुराई की नफरत कम हो जाती है। ये भी एक आलिम है, मुझे नाम अभी भूल गया, उनका कॉल है कि बुरे लोगों की सोहबत से बचो। क्यों भला? हमारे जहन में फौरन पता क्या आता है कि वो तुम्हें बुरा बना देंगे। नहीं, अब मैं दोबारा बोलूंगी, आप फिर सुनिएगा फोकस होके, कहा बुरे लोगों की सोहबत से बचो क्योंकि वो तुम्हें नेक लोगों से बदगुमान कर देंगे। और इट्स सो ट्रू। कभी आप ड्रामों में, फिल्मों में, स्टेजेस पे मौलवी लफ्ज़ का मजाक उड़ाता देखें, जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाता देखें, और कुछ भी करता देख लें, हमेशा झिझक होती है एक लफ्ज़ मौलवी और गलत किस्म की बातें किन महफिलों में होती हैं आप सब जानते हैं, बेतकल्लुफ महफिलों में, दोस्तों में, लतीफे, कॉमेडी और पेरोडी कर देना और ये कर देना और वो कर देना। क्यों? इसलिए कि झिझक खुल जाती है। आप नेक नहीं बन सकते, नेकों को बुरा ना कहें। देखिए, किसी एक बंदे का अल्लाह के यहाँ बड़ा आला मुकाम होता है। आप उसके बारे में बात करके अल्लाह को अपने मुकाबले पे ले आते हैं, और इसकी दलील पहले बारे में है, मन कान अदुव लिल्लाही, अल्लाह ताला कहते हैं जो जिब्राइल का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन, वो रसूल का दुश्मन। यहूद ने खुद को जिब्राइल के मुकाबले पे पेश कर दिया था, कहते थे मैं नहीं अच्छे लगते जिब्राइल, नऊज़ुबिल्लाह, ये इतने सख्त किस्म के हुक्म लेकर आते हैं। और ये क्यों बनी इस्माइल में नबूवत लेके चले गए, हम नहीं उससे बोलते। बस इतना सा एक नागवारी का जुमला था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो मन कान अदुव्वली जिब्राइल फ़ैन्नसलकलबिक, नहीं कहा जिब्राइल तो बाद में, पहले अल्लाह और उसका रसूल, यानी जिसने अल्लाह के किसी एक नेक से बुगज रखा उसने अल्लाह से बुगज किया, उसने अल्लाह से नफरत रखी उसने नबी से बुगज रखा। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा आपको अल्लाह से प्यार होगा, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले से भी प्यार होगा, उतना ईमान महफूज होगा। और तौहीद को बगैर दलील के मानना। इमाम राजी का नाम शायद आपने ना सुना हो, अरबी मुफसर थे, बड़ी मारूफ तफसीर, तफसीरे कबीर इनकी किताब है। आज भी आप कह सकते हैं कि एक बैंक है, वो मर्जे निकालते जाओ, रजू करते जाओ, किसी भी आलिम को, किसी उस्ताद को, किसी दीनदार को, किसी मसले को अगर ढूंढना है ना, तो जाकर तफसीर कबीर खोल ले, उसके अंदर से तफसीरें निकली हैं, इतनी ज्यादा। बहुत ही बड़ी प्यारी बात करने वालों में से थे, मवाहिद थे, उन्होंने किताब लिखी अल्लाह की तौहीद पे, वो सारी दलीलें उसमें जमा कर दी जिसका कोई रद्द ही नहीं पेश कर सकता था। हत्ता कि ऐसी वो किताब थी कि उनको भी लगा कि ये लाजवाब किताब है। कभी होता है ना, कहने और लिखने और बोलने वाले को भी लगता है कि आज बड़ी अच्छी बात हो गई, आज पूरी बात समझा दी, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अच्छा क्लियर हुआ। तो इनको बड़ा नाज था कि मैंने एक लाजवाब किताब लिखी। अब देखिए, जिस बंदे ने तौहीद के दलाइल पे किताब लिखी, उसके अपनी तौहीद कितनी मजबूत होगी, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है। वफात का वक्त करीब आता है इमाम राजी की, शैतान इनके सामने आया, कहने लगा कि ए इमाम राजी, तेरा क्या हाल है? तो इमाम राजी का जुमला सुनिए, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद की दौलत साथ लेकर दुनिया से जा रहा हूँ। यानी इबलीस एक किस्म का मनाजरा किया कि चल भाग जा, मैं तो अल्लाह को मानने वाला हूँ और मैं अल्लाह के साथ ताल्लुक का बड़ा अच्छा मामला समझता हूँ। शैतान ने कहा, कोई दलील है तेरे पास कि अल्लाह एक है, कि तू तौहीद की बड़ी बात करता है, इसकी कोई दलील है? इमाम राजी जिन्होंने किताब लिखी थी, उन्होंने शैतान के सामने एक दलील पेश कर दी। शैतान ने वो दलील तोड़कर उसका रद्द देकर कहा, कोई और दलील दे दो। अगर आपने तीसरे पारे के शुरू में हजरत इब्राहिम का किस्सा पढ़ा हो ना, अल्लजी खाजा इब्राहिम नमरूद, और वो जहन में ले आए कि लोग इस तरह मुनाजरे करते हैं, एक दलील दी वो नहीं मानी, दूसरी दी, आखिर कहा कि मेरा रब जो सूरज को मशरिक से लाता है तू मगरिब से ले आ, फबुहित अल्लजी कफर, है ना, वो मसला सामने रखे। यानी वो दलाइल देते जा रहे हैं और शैतान उनके दलाइल का रद्द पेश करता जा रहा है, और इसी तरह करते करते इमाम राजी की तमाम दलीलें पूरी हो गई, यानी जो किताब में दी होंगी या बहुत होंगी। तो शैतान ने उनको लाजवाब कर दिया कि अब आगे बोलो क्या करते हो, जैसे कभी आपके बच्चे भी नहीं बहस बराए बहस और आगे से आगे करने लगे। अब जब वो सारे दलाइल के जवाब शैतान ने बड़े खूबसूरत दिए, तो इमाम राजी परेशान हो गए, हैरान थे, परेशान थे। उस वक्त शैतान ने उनको एक ताना दिया, कहने लगा, इमाम राजी, तौहीद के बारे में तेरा ये हाल है कि तू मुझे ही नहीं साबित कर पा रहा कि अल्लाह एक है, और मतलब मेरे आगे हार गए, और आपके बाकी अकीदों का क्या बनेगा, ऐसे होगा, वैसा होगा, ये होगा, क्या होगा। यानी उसने उनको ताना दिया, तो तुम्हारा बाकी मामलात में क्या होगा। अब ये उनके मरने के पहले के जो दिन थे ना, उन दिनों की ये सारी कहानी है। खैर, इमाम राजी को फिक्र लग गई कि कहीं मैं सारों को पढ़ाते पढ़ाते खुद ही ना फेल हो जाऊं। वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा ही ना हो जाए। तो कहने लगे कि फिर तेरा बाकी चीजों में कैसे मामला होगा, तेरे बाकी मामलात का क्या होगा। खैर, इनके उस्ताद थे, इन्होंने किसी तरह उनसे अप्रोच किया कि बताइए, ये है वो है, उन तक बात पहुंच गई कि राजी मेरा शागिर्द शैतान के हाथों में कैद किडनैप हो रहा है या शैतान के आगे बेबस हो गया। खैर, कहते हैं कि जिस वक्त उन तक ये बात पहुंची ना, तो वो वुजू कर रहे थे लोटे से। उन्होंने लोटा हाथ से जोर से मारा, दीवार पे पड़ा, गुस्से में आ गया और कहने लगे, क्या राजी, तू यूं क्यों नहीं कहता? अब उन्होंने दलील सुझाई अपने शागिर्द को कि मैं अल्लाह की तौहीद को बिला दलील के मानता हूं, कि तू मुझसे दलील मांगता है, जा भाग जा, मैं तो इसको बगैर किसी दलील के मानता हूँ। देखिए, ये अकीदे का इतना मजबूत पहलू बोल दिया मैंने कि इस पे पूरी घंटा बात होनी चाहिए। कभी कभी बच्चों से बड़ों से बात करते लोग कहते हैं, बेटा अल्लाह की इबादत करो, तो बच्चा पूछता क्यों करूं, तो कहते इसलिए कि उसने तुम्हें पैदा किया। ये जुमला कहना कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है इसलिए उसकी इबादत करो, ये भी शिर्क है। तुम क्या चीज हो? नहीं, अल्लाह तुम्हें पैदा ना भी करता तो भी उसकी इबादत करो, क्योंकि अल्लाह हुस्समत। बात समझे? अल्लाह को दलील की भी जरूरत नहीं। लैसा कमिस्लिही शैयुन वहुवस समीउल अलीम, वो तो सबसे बड़ा है, उसकी तो कुदरत बड़ी है। तो लिहाजा ये बात उस्ताद की मौत के वक्त इमाम राजी तक पहुंची। तो जब अगली दफा फिर शैतान आया उनके पास कि और दलील है कोई, मिली, वो कहते हैं ना कोई और किताब पढ़ ली, तो उन्होंने कहा जा भाग जा, मैं अल्लाह की तौहीद को बिला दलील के मानता हूँ। ये लफ्ज थे इमाम राजी की जुबान पे और उनकी रूह निकल गई। तो दुआ किया करे कि अल्लाह खात्मा बिल खैर करे। सोहबते सालेहीन की आपको मुझे मरते दम तक जरूरत है, कोई इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इल्म वालों की जरूरत है, तौहीद वालों में रहने की जरूरत है, अच्छी नमाज पढ़ने वालों में बैठा करे, सदका खैरात करने वालों में बैठे। जिनमें आप बैठेंगे ना, आप अपना ईमान उनसे रिलेट करेंगे।